स्वागत है आप सब का हमारे साप्ताहिक श्री कृष्ण भावनामृत कार्यक्रम में। और आज हमें परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी श्रीमती राधा रानी जी के गुणों के बारे में बताएंगे।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री राधा जी की महिमा अनिर्वचनीय है। स्वयं भगवान राधा जी के दास जैसे रहते। यद्यपि राधा रानी भगवान की प्रिया हैं, प्रेयसी हैं, और वे अपने को श्री कृष्ण की दासी मानती हैं। हों तो दासी नित्य तिहारी। बारंबार राधा रानी यही कहती हैं कि हे प्रियतम, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप कृपा रखिएगा हम पर। परंतु भगवान प्रिया जी के प्रेम के इतने अधीन हैं कि वे उन्हें अपनी स्वामिनी मानते हैं। कहते हैं राधे मुझ पर कृपा करो। और गीत गोविंद में श्री राधा रानी को मनाते हुए यहाँ तक कहा है भगवान ने कि आप अपने चरण कमल को हमारे सिर पर रख दीजिए। यदि राधा रानी ने ऐसा नहीं किया, धे ही ते पद पल्लव मुदारो मम सिर, मेरे सिर पर अपना चरण कमल रख दो राधे, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। इस तरह भगवान प्रार्थना करते हैं। तो राधा रानी की महिमा राय रामानंद के मुख से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही वक्ता थे, उनके हृदय में केवल मुख भर राय रामानंद का था। जैसे यहाँ हम कुछ बोल रहे हैं और यदि स्पीकर या भोंपू बोलता होगा तो भोंपू वास्तव में नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तो राय रामानंद जी एक भोंपू जैसे थे, बोल रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में बैठकर प्रश्न कर रहे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा राय रामानंद जी साध्य और साधन के विषय में चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं। तो वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ होता है। होते होते जब राय रामानंद जी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यह बाह है और आगे कहिए, और आगे कहिए, यह भी ठीक है और आगे कहिए, कहते 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 जब ब्रज भाव, ब्रज में भी सखाओं का, फिर गोपियों का, माँ जसोदा का भाव कहते गए, और जब श्री राधा के भाव को कहना हुआ तो ऐसा भी वर्णन है कि राय रामानंद जी ने कहा कि अब इसके आगे कहा नहीं जा सकता, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनका मुख बंद किए कि बस कि नहीं कहा जा सकता है, इतना ऊंचा भाव है। श्रीमद् भागवतम में श्री राधा रानी का प्रसंग छद्म भाव से प्रकट किया गया है। यदि लीलाएं प्रकट हैं परंतु नाम है छिपा करके रखा गया है। कुछ महानुभावों का ऐसा कहना है कि श्री राधा यह शब्द उच्चारण करते ही सुखदेव गोस्वामी को 6 महीने की समाधि लग जाती थी, और महाराज परीक्षित को कथा सुनानी थी, इसलिए बीच में राधा रानी का नाम नहीं बोले। और वैसे श्रीमद् भागवतम में एक ही गोपी का नाम दिया गया है, जसोदा का, बाकी अन्य गोपियों का नाम नहीं बोला गया है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि ये सब बिना नाम के थी। एक प्रसंग में राधा रानी का उल्लेख होता है। जिस समय श्री कृष्ण रास विहार प्रारंभ किए तो उसमें समान भाव से भगवान ने सबके साथ नृत्य किया, सबके साथ नृत्य किया समान भाव से, किसी गोपी में भेदभाव नहीं किया कि यह मेरी अधिक प्रिया है या कम प्रिया है। सबके साथ आलिंगन, चुंबन, नृत्य, गीत, आलाप लेना सबके साथ किया। इस पर वहां पर 2 भाव उत्पन्न हुआ गोपियों में। जो गोपियां सामान्य थी साधारण, उनके मन में बहुत बड़ा एक कृष्ण प्रेम के कारण अहंकार आया। यह अहंकार भी प्रेम का ही विकार था। यह उनके मन में भाव आया कि आज हम कितनी महान हैं कि प्रियतम के साथ नाच रही हैं, और हमसे बढ़कर के कोई नहीं। उनके मन में ये भाव आया। वास्तव में ब्रह्म शिव आदि के द्वारा सेवित चरण कमल भगवान जिन गोपियों के साथ नाच रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य उन गोपियों का है। तो उनके मन में अतिशय प्रेम के कारण यह भाव आया, इसको अभिमान कहते हैं। परंतु यह लौकिक अभिमान नहीं था, यह दिव्य था, भगवान को सुख देने वाला। तो चंद्रावली आदि गोपियों के मन में यह अभिमान आया कि हम तो बड़ी हैं, परंतु वास्तव में जो सर्वोत्कृष्ट हैं श्री राधा, उनमें मान का उदय हो गया, क्रोध आ गया कि आज तो श्री कृष्ण अन्य गोपियों के साथ भी उतना ही प्रेम कर रहे हैं जितना हमसे करते हैं। तो ये रुष्ट हो गई, क्या जो हमको सबके समान बना दिए। तो रासलीला में और गोपियां तो नाच रही थी, राधा रानी मुंह लटका करके बैठ गए, मैं नहीं नाचू। तो भगवान ने देखा कि अन्य गोपियों को अभिमान हुआ है सौभाग्य जनित, और राधा को मान हो गया है। तो उनका सौभाग्य मद तोड़ने के लिए और राधा रानी को मनाने के लिए भगवान रास विहार वहीं बंद किए और धीरे से प्रिया जी का हाथ पकड़े और उनको लेकर के निकुंज में चल दिए। अन्य गोपियों ने देखा कि प्रियतम नहीं है, तो वे तो उन्माद में हो गई, खोजने लगी कृष्ण को वृंदावन में, कुंज में, जमुना के किनारे और सब जगह, पर्वत की घाटी में, गुफा में, सब खोजने लगे। बहुत रो रहे थे, इसका वर्णन बड़े विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने किया है। प्रिया जी को मनाने के लिए, श्री राधा को मनाने के लिए भगवान उनके साथ चल दिए। तो इस पर राधिका प्रसन्न हो गई, लेकिन अन्य गोपियां तो जलने लगी, बहुत विरह में हो गई कृष्ण के बिना। तो वे अन्वेषण कर रही है कृष्ण का। श्रीमद भागवत दशम स्कंध के 3वें अध्याय में जिसका नाम कृष्णान्वेषणम है, कृष्णान्वेषण, कृष्ण का अन्वेषण कर, उधर क्या हुआ, श्री राधा ने देखा कि प्रियतम हमसे इतने प्रेम करते हैं, तो वे अपना श्रृंगार करने के लिए उनसे कहीं, तो श्री कृष्ण वृंदावन के पुष्प को तोड़ तोड़ कर माला बनाए, श्रृंगार किए, बेड़ी गुथे, बहुत तरह से भगवान ने सौभाग्य दिया राधा रानी को। और इधर श्री गोपियां खोज रही थी, खोजते खोजते कहीं चरण चिन्ह नहीं मिला। अंत में देखी कहीं बालू पर कृष्ण के चरण चिन्ह उभरे हुए थे, कृष्ण के साथ साथ एक स्त्री के भी चरण चिन्ह उभरे हुए थे जमुना के बालू में, और चंद्रमा की चांदनी में साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। कुछ गोपियां कहती हैं जो राधा रानी से ईर्ष्या रखती हैं, वह ईर्ष्या भी वास्तव में दिव्य है, प्रेम है, लौकिक जगत की बात नहीं है। तो पूछती हैं आपस में, कस्या चैतानी पदानी जाताया नंद सुनना, ये किस स्त्री के पैर हैं जो कृष्ण के साथ गई है, वो तो पहचान गई। चंद्रावली जी यदि पहचान गई कि राधा का चरण कमल है, वो लोग तो स्त्री की भाषा में गाली देने लगी, कौन गई है, कौन कृष्ण के साथ गई है। तो उसी समय राधा रानी के अनुकूल रहने वाली सखियां ललिता और श्री विशाखा इत्यादि ये कहती हैं कि अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्मो बिहाय गोविंद प्रीतो जामनयद रह। इसने कृष्ण की आराधना की है, इसने सब तरह से कृष्ण को सुख दिया है, उसी के साथ कृष्ण गए हैं, मर क्यों रही हो, क्यों ईर्ष्या कर रही, खोज रही थी सब लोग। तो ललिता जी कहती हैं कि इसी ने गोविंद को संतुष्ट किया है अपनी सेवा से। तो अनया राधितो नूनम, निश्चितम अनया गोविंद राधिता आराधित, इसने गोविंद की आराधना की है, आराधना करते कृष्ण को प्रसन्न करना, सुख देना, इसने कृष्ण को सब तरह से संतुष्ट किया, अर्थात यह राधा है। श्लोक बता रहा है कि अनया राधितो नूनम आराधयते इति राधा, जो आराधना करे, जो प्रसन्न करे कृष्ण को, उसको राधा कहते। कृष्ण को अब तक जितने भक्तों ने प्रसन्न किया है, सुख दिया है, उनमें सबसे श्रेष्ठ श्री राधा। तो ललिता जी कहती है कि ये राधा है जो कृष्ण के साथ गई है। पहले तो कृष्ण के चरण रज को देख करके गोपियां कृष्ण के चरण धूलि को मस्तक पर रख रही थी, प्रणाम कर रही थी, हमारे प्रियतम का चरण रज। और जब राधा रानी का चरण देखा तो विरुद्ध पक्ष वाली पहचान गई कि राधा है, लेकिन कहती कौन राण गई है कृष्ण के साथ, ऐसे बोलती, कौन गई है हम लोगों को छोड़ करके और कृष्ण को लेकर एकांत में कौन गई है। तो राधा के चरण रज को नहीं ले रही, उनको राधा से बहुत डाह है। वास्तव में राधा रानी ही चंद्रावली बनी हुई है, यह आंतरिक रहस्य है लीला स्वादन। और दूसरे जुथ की जो गोपियां हैं वो राधा रानी के चरण रज को भी अपने मस्तक पर रखने लगे। और वो राधा जब गई कृष्ण के साथ तो उसके मन में भी बाद में चलकर बहुत बड़ा अभिमान हुआ कि प्रियतम कृष्ण हमको इतना मानते हैं, सभी गोपियों को छोड़ दिए और हमारे साथ वन में विहार कर रहे हैं। कई प्रकार से श्रृंगार कराई और भी अंत में कहती है प्रियतम के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, कदे मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत सुकुमारी हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ, यदि आप जहाँ जाना चाहते कहीं जाना चाहते हैं तो आप मुझे टांग कर ले चलिए। अरे भाई तुम वन में भ्रमण कर रही हो, तुम सुकुमारी हो, तो क्या कृष्ण कोई कहार थे क्या? वो तो सुकुमार है, राधा रानी से अधिक सुकुमार है। लेकिन भाव हुआ कि जब प्रियतम हमें इतना मानते हैं तो क्या ये कंधे पर मैं उसको ढो सकते हैं? वो केवल देखना चाहती थी और चढ़ना नहीं चाहती थी। अतिशय स्नेह पा करके यह भाव राधा रानी के मन में आया। न पा रही हम चलितु नय माम जत्र ते मना, अहम चलितु न पा रहे, मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं थक गई हूँ। जत्र ते मना, आपका जहाँ मन हो, जहाँ जाना हो, तो माम नय मुझको ले चलिए, मुझे कंधे पर चढ़ा कर ले चलिए, चाहे जैसे भी ले चलिए, मैं नहीं चल पाऊंगी। कुछ टीकाकारों का ऐसा मत है कि राधा रानी प्रेम में शिथिल हो रही थी, प्रेम में एक शिथिलता होती है, उसके कारण कह रही है। तो भगवान वहां पर बैठे, बैठ करके कहे कि ठीक है, स्कंधे आरुह्यता मिति, आप हमारे स्कंध पर चढ़ जाइए। और इतना सुनना था कि राधा रानी को प्रेम वैचित्य हो गया। प्रेम वैचित्य का अर्थ होता है कि प्रियतम निकट है लेकिन विरह की स्फूर्णा होने लगती। उनके मन में यह भाव आया कि श्री कृष्ण हमें कितना मानते हैं, कितना प्रेम करते हैं हमसे। यह भाव आते ही वे भूल गए कि कृष्ण निकट ही हैं। वे हा नाथ रमण ये कहने लगे, हा प्रियतम, हा नाथ आप कहाँ गए हमें छोड़ करके। और श्री कृष्ण उनके विलाप का आस्वादन करने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए कुंज में निकट ही छिप गए। वे खोजने लगे कृष्ण को, कृष्ण नहीं मिल रहे थे। और इधर गोपियां खोज रही थी कृष्ण को, कई जगह उन्होंने देखा, कहते थे देखो यहाँ फूल तोड़े हैं तो उनके पंजे तो जमीन में हैं, एड़ी का पता नहीं है। और वैसे कृष्ण ढोकर चले भी थे प्रिया जी को इसके पहले भी, तो वे कहते हैं देखो यहाँ पर कृष्ण का चरण बालू में ज्यादा निमग्न हुआ है, भार लेकर के चले हैं। तो भार क्या, वहां बैग ढो रहे थे? नहीं, निश्चित ही राधा को लेकर चले इस तरह। तो और चंद्रावली आदि कहते हैं देखो इस कामी को, स्त्री को टांग कर चल रहा है, इतने पैर धसे हुए, यहाँ श्रृंगार किया, यहाँ पीछे बैठा है, यहाँ फूल तोड़ा है, यहाँ यह किया है, वहाँ वह किया। इस तरह से जा रहे थे, तब तक जाते जाते राधा रानी मिली। जब किसी व्यक्ति पर संकट पड़ता है तो एक मति होती है। कृष्ण के विरह में सभी गोपियां थी, इसलिए सबको एक समान दुख था। जब राधा रानी को छटपटाते हुए देखा, जमुना के किनारे बालू में गिरी हुई राधा रानी एक स्वर्ण लता के समान लग रहे थे। वो आंसू बह रहे थे, गाज निकल रहा था मुख से, फेन निकल रहा था, हा कृष्ण हा कृष्ण हा प्रियतम कर रहे थे। तो दौड़ करके सभी गोपियां राधा रानी को उठा ली। चंद्रावली भी सेवा करने लगी, उसने देखा कि बेचारी इस तरह से दुखी है, हम लोगों के समान ही अभी कृष्ण को बुरा हमें दुखी है। तो राधा रानी के पास पहुंचती है, कोई उनके केस को संवारने लगी, कोई उनके मुख को पोछती है, आंचल से धूल झाड़ती है, कोई आंसू पोछती, कोई पंखा करने लगे, कोई पानी लेने के लिए दौड़ी मूर्छित हो गई थी, और उनको उठा करके होश में लाने का प्रयास करने लगी गोपियां। और पूछने लगी बाद में जब होश हुआ, सखी तुम कैसे हो, तुमको भी छोड़ करके चले गए। तब वो रो रो करके कहने लगी कि अरे सखी मैं कितनी दुष्टा हूँ, मुझमें कितना दोष भरा पड़ा है, हमारे प्रियतम हमसे इतना प्रेम करते हैं लेकिन मैं उनके कंधे पर चढ़ना चाहती थी, इतना अभिमान मुझे हो गया, मेरे इसी दोष के कारण प्रियतम हमें छोड़कर चले गए। वास्तव में छोड़कर नहीं गए थे कृष्ण, झाड़ी में छिप करके प्रिया जी के प्रेम के उद्गार सुन रहे थे बोलती। अंत में राधा रानी ने कहा कि सखियों चलो जहाँ रास हुआ था जमुना जी के पुलिन पर वहीं चले, यदि हम लोग कृष्ण को खोजेंगे तो कृष्ण और भी वन में धसते जाएंगे, उनके कांट उनके पैर में कंटक लगेंगे, चलो जमुना जी के पुलिन पर। तो जमुना जी के पुलिन पर आकर श्री राधा रानी के नेतृत्व में गोपियों ने गीत गाया कृष्ण को बुलाने के लिए, उसको गोपी गीत कहते हैं।
राधा रानी का स्वर उसमें सबसे ऊंचा था, जो पीछे पीछे सब गोपियां गा रही थी, जय तिथे भिकम जन्मना ब्रज, बहुत ही उत्कृष्ट गीत है। और श्रीमद् भागवत के यदि अध्यायों की ऊंचाई देखी जाएगी कि सबसे उत्कृष्ट अध्याय कौन है, यही सबसे श्रेष्ठ गोपी गीत और भ्रमर गीत। बोलो गाने लगी, जब गोपी गीत गा चुकी और गाते गाते अंत में रोने लगी, फूट फूट करके सभी गोपियां रोने लगी, तब भगवान प्रकट हुए, हंसते हुए आए। वे ईश्वर जी इस टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान पर्वत में खोजने से नहीं मिलेंगे, तीर्थ में वास करने से नहीं मिलेंगे, या कुंज इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलेंगे, जब कोई गाएगा और रोएगा तब मिलेंगे। जब गोपियां खोज रही थी तो कृष्ण नहीं मिले, और खोजना छोड़ करके आ करके उच्च स्वर से प्रीतम का गुण गाने लगी और रोने लगी तब मिले। बिना रोए नहीं मिलेंगे कृष्ण। संसार में भी आप देखते हैं, माँ अपने घर के काम धंधा में रहती है और बच्चा यदि न रोवे तो उसको उतना गोद में वो नहीं लेगी। रोने लगता है तो काम धंधा छोड़ करके जा करके उठा ले। खास करके दो व्यक्ति जब रोते हैं तो बहुत जल्दी करुणा उत्पन्न हो जाती है, एक तो स्त्री और दूसरे बच्चे। इनके रोने पर गति पिघल जाता है। भगवान जब देखे कि गोपियां रो रही हैं तो प्रकट हुए, हंसते हुए प्रकट हुए। इसका अर्थ है, लिखते हुए आचार्य कहते हैं कि भगवान हंसते हुए प्रकट हो रहे हैं ये दिखाने के लिए उसे कोई कष्ट नहीं हुआ वन में, आप चिंता ना करें। नहीं, कांट पैर में लगा है और ओहो करते हुए आवे तब तो और दुखी हो जाती गोपियां, तो अपना आनंद प्रकट करते हुए भगवान आ रहे थे। और दूसरा हंसने का भाव हरीश्वर जी कह रहे हैं, ना तुम्हारा मन बढ़ गया कि अब कंधे पर चढ़ना चालू की, तो उसका फल पा लिया ना। मानो इस तरह से भगवान मुस्कुरा रहे। प्रेम करने का मतलब ये थोड़े है कि हमारे कपार पर चढ़ो तुम लोग। मन इस तरह से विनोद के भाव से मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। पर उस समय भी राधा रानी क्रोध से कृष्ण को देख रहे थे, और गोपियां मिल रही थी, कोई हाथ छुरा रही थी, कोई भगवान के कंधे पर अपना हाथ रख रही थी, चरण कमल को अपने स्तन पर रख रही थी, लेकिन राधा रानी क्रोध से देख रही थी। राधा रानी में मान अधिक समय तक रहता है। गोष्ठी हुई गोपियों के, उसमें भगवान के साथ प्रश्नोत्तर हुआ गोपियों का। जमुना के उस पुलिंग पर रात्रि के समय चंद्रमा की धवल किरणें फैली थी, बहुत ही सुंदर इष्ट गोष्ठी हुई। भगवान थे और केवल गोपियां न प्रश्न हुए। तो इस तरह श्री राधा जी का थोड़ा सा उल्लेख मिलता है बहुत संक्षेप में श्रीमद् भागवतों में, परंतु अन्य जो गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत आदि गीत है गोपियों का चरित्र, उसमें सब सर्वत्र श्री राधा रही है। श्री राधा कौन है तो जानने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कृष्ण कौन है। स्पष्ट कहा जाता है कृष्ण में और राधा में भेद नहीं है, तो कृष्ण को जो व्यक्ति जान जाएगा वह कुछ कुछ राधा रानी को समझ जाएगा। बहुत विस्तार से मुझे यहाँ कहने का समय भी नहीं है, लेकिन संक्षेप में समझना चाहिए कि श्री राधा भगवान की शक्ति है और श्री कृष्ण शक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है और अभेद भी है। शास्त्र कहते तो चंद्रमा है और चंद्रमा की चांदनी, आप चांदनी से शून्य चंद्रमा की कल्पना नहीं कर सकते। कोई कहे कि मैं चंद्रमा को देखा जिसमें कोई प्रकाश नहीं था, जब प्रकाश ही नहीं है तो चंद्रमा क्या है। कोई कहे कि मैं आग के पास गया उसमें कोई आंच नहीं थी, आग की कल्पना बिना ताप के और प्रकाश के नहीं हो सकती, आग का अर्थ ही है ताप से युक्त। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, चंद्रमा में चांदनी है, दूध में धवलता है, उसी तरह से राधा रानी कृष्ण की स्वरूप होता शक्ति, उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। यह प्रश्न किया जाए कि तो अलग क्यों दिखती हैं? अलग तो दिखती भर है, वैसे दिखने के लिए तो भगवान भी अलग अलग दिखते हैं, असली रंग प्रत्येक गोपी के पास हो गए, पर फिर भी सब मिलाकर एक कृष्ण है। महिषियों के पास द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ भगवान 16108 रूप से रहते हैं, पर एक ही कृष्ण है। देखने में केवल लगता है कि भेद है, उसी प्रकार वास्तव में श्री राधा रानी साक्षात श्री कृष्ण है। लीला आस्वादन के लिए वो दो दिखती है, उनसे अलग दिखती है पर अलग नहीं है। राधा का यही वास्तविक स्वरूप है। भगवान की तीन प्रकार की शक्ति है, एक है स्वरूप शक्ति जिसको चित शक्ति कहते हैं, दूसरी है जीव शक्ति और तीसरी है माया शक्ति। तो माया शक्ति के अधीन तो हम लोग हैं, देख ही रहे हैं कैसे हैं। माया के तीन विभाजन है शक्तियों के, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों के द्वारा माया इस जगत का की सृष्टि करती है। माया वास्तव में उपादान कारण है, सृष्टि तो भगवान करते हैं, प्राकृत जगत भगवान की बहिरंगा माया शक्ति का उत्पादन है। और इसके बीच में जीव है, स्वरूप शक्ति और माया शक्ति के बीच में जीव हम लोग हैं। छिन्मय शक्ति है लेकिन माया के अधीन, इसको तटस्था शक्ति भी कहते हैं। और स्वरूप शक्ति है भगवान के बिल्कुल अपने स्वरूप से अभिन्न, के भी तीन स्वरूप हैं, हलादनी संबित और संधिनी। एक ही शक्ति तीन रूप में विभाजित है, जैसे माया शक्ति एक है लेकिन तीन रूप में है, रजह सत्व और तम तीन रूप में है, वैसे स्वरूप शक्ति तीन रूप में है। स्वरूप शक्ति और माया शक्ति में अंतर समझ लेना चाहिए। जैसे ताप और प्रकाश सूर्य की स्वरूप शक्ति है, लेकिन अंधकार और बादल ये सब स्वरूप शक्ति नहीं है। स्वरूप शक्ति तीन रूप में है, संधिनी संबित और हलादिनी। तो जिस शक्ति के बल से, जिस शक्ति से संश्लिष्ट रहकर परब्रह्म सदा सत्ता विशिष्ट हैं, वो रहेंगे, हैं अनादिकाल से हैं, अंत काल तक रहेंगे। धान उनका बल उनका यश सौंदर्य सब कुछ एक रस बना रहेगा। उनकी इस विशेषता को संधिनी शक्ति कहते हैं, सत्य इसको कहते हैं, रहेंगे हैं और जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे। जब धान है परिकर है, भगवान अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं तो उनका जो कुछ है सदा रहेगा और सदा से है। भगवान के कुछ परिकर बढ़ जाएंगे लेकिन उसमें से घटेंगे नहीं। यहाँ साधना करके भगवान के धाम में जीव जा सकते, ऐसा नहीं है कि भगवान के परिवार में भी किसी की मृत्यु हो जाएगी घट जाएंगे, ऐसा नहीं। उनके परिवार में बूढ़ा हो करके घटते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, जैसे आते रहते हैं और लोग जाते रहते। भगवान का परिवार ऐसा नहीं है वैकुंठ, जगत्वा न निवर्तन, तो वहां से एक भी व्यक्ति घट नहीं सकता। जब होगा तब यहाँ से बढ़ेगा, साधन में सिद्ध होकर के हम भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। तो भगवान का, भगवान के परिकर, भगवान का सौंदर्य ज्ञान बल जो कुछ भी है, दया जस सब कुछ ज्यो का त्यो रहेगा, घटने वाला नहीं। शक्ति के द्वारा भगवान की यह स्थिति है, उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। दूसरी शक्ति है संबित शक्ति। संबित का अर्थ होता है ज्ञान। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं है। एक जीव के हृदय में है, ब्रह्मांड में है, सर्वत्र है। अनादिकाल में जो कुछ बीत गया है उसको भी जानते हैं, अनंत काल तक क्या होगा वो सब कुछ जानते हैं, और इस समय कहाँ क्या हो रहा है वो सब कुछ ज्ञान है। देखो ज्ञान शक्ति या संबित शक्ति कहते हैं, चित्त कहते हैं, सत चित्त। तो भगवान नित्य सुख में है, आनंद में है। सिख तो केवल आनंद ही आनंद है। भगवान को न कभी दुख हुआ है आज तक और न आगे दुख होगा। लेकिन मनुष्य या देवता ऐसे है कि दुख से ही घिरे हुए हैं। लोगों से पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा क्या चीज है, तो यही कहें सबसे ज्यादा दुख है। और क्या, ग्लानी शोक। भगवान सदा आनंदमय है, जैसे सूर्य प्रकाशमय और तापमय है, उनसे ताप और प्रकाश का विकिरण होता है, निकलते हैं। उस तरह भगवान से आनंद निकलता रहता है, सुख निकलता रहता है, वह आनंदमय। अतः कोई भी व्यक्ति जब भगवान से युक्त होता है तो आनंदमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। कोई व्यक्ति अग्नि के पास आवे, सूर्य के सामने हो, तो वो स्वयं ही तप्त होने लगता है, गर्मी बढ़ती है। उसी तरह से भगवान के निकट होने पर जीव आनंदमय हो जाता है। शक्ति को, शक्ति से भगवान नित्य आनंदमय है, सुखमय है, इसको हलादिनी शक्ति कहते हैं। तो संधिनी संबित और हलादिनी आनंद कहते, सत चित और आनंद, तीन शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति भगवान की। तो इसमें जो हलादिनी शक्ति है वही है श्री राधा मूर्तिमान। राधा से ही भगवान आनंदमय है या कोई भी जीव आनंदमय हो सकता है भगवान की इसी शक्ति से। तो श्री कृष्ण सारे विश्व को आनंद देते हैं, सुख देते हैं, उनको भी आनंद देने वाली श्री राधा, इस राधा रानी की महिमा हम समझ सकते हैं। संसार में कहीं भी कोई सुख है, आनंद है, तो उसके कारण है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के आनंद का कारण है श्री राधा। ये उन्हीं की शक्ति है, भेद नहीं है कृष्ण में, कृष्ण और राधा में भेद नहीं है। तो आह्लाद नहीं सकती, कृष्ण को आह्लाद देती है, सर्वदा सुखी उनको सुखी रखने का प्रयास करती है। श्री राधा का मान करना, बोलना, चलना, अपने शरीर का श्रृंगार करना कोई काम है, वो केवल प्रियतम श्री कृष्ण को सुख देने के लिए। राधा रानी में कभी ऐसा विचार हो नहीं सकता कि मैं अपना सुख प्राप्त करूं, तत् सुख सुखित्व है। कृष्ण को सुख देना ही अपना सुख है। भक्ति जो है वह आह्लादनी शक्ति की एक वृत्ति है। भक्ति जिस भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है तो सुखी हो जाता है, और उस भक्ति से भगवान सुखी होते हैं। एक अर्थ यह कहिए कि भगवान से प्रेम करने की जितनी भी वृत्तियां हैं सब राधा रानी। भक्त में यदि भक्ति उत्पन्न हो रही है तो राधा रानी का ही एक बहुत सूक्ष्म अंश वहां प्रकाशित हो रहा है, वो भक्ति। कृष्ण को राधा रानी इस तरह से सुख देती है। रानी के अनंत गुण है, अनंत गुण राधिकार 25 प्रधान, और गुणों में 25 प्रधान गुण है।
कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे Krishna, Krishna, Krishna.